ہم اس وقت ہدایت کے اعتبار سے پہلے الہامی مذہب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، میرا سوال ہے کہ وہ کون تھے؟ جی، ہدایت کے اعتبار سے سب سے پہلا گروہ کون سا ہے؟ سب بول دیں، بنی اسرائیل. ان کو بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں؟ یعنی بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی نسبت سے ان کو پکارا گیا، کیونکہ اسرائیل ان کا لقب تھا، اور اسرا کہتے ہیں قیدی کو، اسرائیل اللہ کے قیدی، یعنی بنی آدم. تین دفعہ تو سورہ بقرہ میں آئے گا یا بنی اسرائیل، جس میں ایک آ گیا، دوسرا آج کے سبق میں، تیسرا آگے آخر میں آئے گا اسی قوم کے قصے کے. ان کو تو باپ دادا کی نسبت سے پکارا گیا نا، اسرائیل ہے تو وہ پھر بات وہیں سے شروع ہوتی ہے نا، ابراہیم کا بیٹا اسحاق، اسحاق کا بیٹا یعقوب، اور ان سے یہ ہے. تو کبھی حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں کہہ دیا کہ او اسرائیل کے باپ، یا ابراہیم کو ان کے باپ کی نسبت سے کیوں نہیں پکارا؟ کوشچن سمجھے میرا؟ یعنی یہاں ایک بہت نیا نقطہ دینے لگی ہوں، یہ پیچھے نہیں دیا آپ کو، کہ یہاں بچوں کو ماں باپ کی نسبت سے پکارا جا رہا ہے، کیونکہ ماں باپ نے بڑے کارنامے کیے. ماں باپ میں سے ماں کا نام تو میں ایسے ہی ایک محاورتن لگا رہی ہوں نا، جب باپ یا ماں باپ اچھے کام کرتے ہیں نا، تو بچوں کی نسبت ماں باپ کی طرف ہوتی ہے. اس کے برعکس بعض بچے اپنے ماں باپ کی پہچان بن جاتے ہیں. وہ اچھا آپ امام سدیس کی بہن ہیں، اچھا آپ امام شریم کی بہن ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ اس کی یہ ہیں وہ ہیں. تو جو اچھا کام کرے گا نا وہ پہچان بن جائے گا. یہ نقطہ آپ کو دینا چاہ رہی تھی، کیونکہ یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کو لینے سے بندہ اپنے آپ کو واقعی محسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کہاں رکھا. چونکہ بنی اسرائیل کے اپنے کرتوت اچھے نہیں تھے، تو ایک دفعہ بھی پورے قرآن میں ابراہیم کو، اسحاق علیہ السلام کو، اور اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ بنی اسرائیلیوں کے باپ، کیونکہ یہ کوئی قابل ذکر اضافہ نہیں تھا. ادھر میرے آپ کے لیے، اپنے لیے ایک نقطہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم سوچیں اپنے بارے میں، کیا ہم اپنے ماں باپ کے لیے ایک اچھا تعارف ہیں، یا ہمارے ماں باپ ہمارے لیے ایک اچھا تعارف ہیں؟ میرا اگلا سوال ہے کہ یا بنی اسرائیل کہنے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت بتائیے. جی جلدی سے، آر دلانے کے لیے، گڈ. یعنی نسبت کیوں ہے؟ تاکہ دکھایا جائے کہ دیکھو تم کن کے بچے ہو. دوسری بات ہے کہ یہ اپنی نسبت ان سے جوڑتے بھی تھے، اور ان کو اپنے ماں باپ کی وہ باتیں جو پچھلی اچھی اچھی باتیں تھیں وہ یاد تھیں، اور وہ ان کے ناموں سے پہچانا بھی جانا چاہتے تھے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے نام سے اس لیے بھی پکارے جا رہے ہیں تاکہ باپ دادا کی چیزیں کم از کم ان کو دین کی طرف لانے لگے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یہاں نعمت سے کیا نعمت مراد ہے؟ ہدایت کی نعمت، نبوت کی نعمت، نعمتیں اور بہت ساری تھی. ایک نعمت کا آج اضافہ کراؤں گی، کیونکہ پہلی دفعہ آیا تھا تو سوچا ایک تھا، اب دوسری بتا دوں. دیکھیے، بنی اسرائیل قوم کو اللہ تعالیٰ نے انٹلیکٹ دیا، ذہن دیا، وہ سب کچھ ہم پڑھ چکے، بہت زیادہ پلانڈ ہیں، ڈسپلنڈ ہیں، ان کا انٹلیکٹ بہت اچھا ہے. لیکن ایک نعمت ان کے اللہ نے ایک خاص برسی، اور وہ کیا کہ اس قوم نے بڑے بڑے جرم کیے بٹ اللہ کے ایک ہونے کا تصور ان میں سے آج بھی نہیں گیا. یہ بہت بڑی بات ہے. کرسچنز نے ٹرینیٹی بنا لی، لیکن جیوز نے ٹرینیٹی نہیں بنائی. تو یہ بھی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کے اوپر فضل بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ واؤفو بعہدی، اوفی بعہدکم. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کتنے عہد لیے تھے؟ تین عہد. تین عہد. کون سا تھا پہلا عہد؟ تورات پہ عمل، عہد عہد نامہ قدیم کے معنوں میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ان کو ماننے کا عہد، اور تیسرا کتاب کو چھپائیں گے نہیں، آگے لے کر جائیں گے. سورۃ مائدہ کی آیت کوٹ کرائی تھی آپ کو. اس کا تھا کہ میں سوال کرتی ہوں تو آپ ساتھ نہیں چلتے، تو پھر میں ہی سوال جواب بول دوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں ریکیپ ہو جائے. اور لیکن آپ لوگ آہستہ آہستہ عادت ڈالیں، اور یہ کب ہوگا؟ جب پچھلا سبق پڑھ کر آئیں گے. اگر آپ پڑھ کے نہیں آئیں گے پھر بات نہیں بنے گی. اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ عہد کیا تھا؟ کہ تم اگر یہ سب کام کر لو گے تو تمہیں دنیا کی بھی بادشاہت دوں گا، یعنی دنیا میں تمہیں ورلڈ لیڈر بنا دوں گا، اور آخرت میں تمہیں جنت دوں گا. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عہد ان کے ساتھ برابری کے ساتھ کہا گیا، یعنی مین کے مشروط ہے، کنڈیشنل ہے. ویا یا فرحبون، رہب کس خوف کو کہتے ہیں؟ जिसमें दिल खट्टा होने लगे, जिसमें दिल में से दुनिया निकल जाए, एक चीज़ अपनी जगह से हटे और दूसरी जगह इधर आ जाए। दुनियावी चीज़ों से खौफ होना मुसलसल खौफ होता है, और दुनियावी चीज़ों से एक इंसान की दिलचस्पी दिन ब दिन कम होती जाती है। और यही बात यहाँ बताई गई कि चूंकि ये अहले किताब दीनदार थे, तो जब दीनदार तबके में कोई चीज़ अच्छी होती है तो वो सारी सोसाइटी में बहुत जल्दी आम हो जाती है। और इसी तरह ऑपोजिट भी है, माल ज्यादा होता है तो पावर अच्छी लगती है। ये लोग पावर तलब करते थे, यानी आप मदीना के जो यहूद के जो सरदार थे ना, उनको दौलत नहीं चाहिए थी, वो तो बन गई। जब दौलत आम होती ना, फिर इंसान अथॉरिटी चाहता है, और ये आकर उसमें अथॉरिटी लेना चाहते थे। वाह मीनू बीमान जल तुम मुसद्दिक लिमा महाकुम, सवाल पैदा होता है यहाँ आमीनू कहकर इनसे किस ईमान का तकाजा किया गया, इनको किस बात पर ईमान लाने की दावत दी गई, महाकुम से क्या मुराद है। तीन चीजें बताई थी, शाबाश, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, कुराने पाक नबी सल्लम पर जो उतरा जी, शरीयत मुसलमानों की, यानी मीन क्या, पूरे के पूरे मुसलमान हो जाओ, आमतौर पे जो भी करते थे उसको छोड़ दो। वला तकुनु अव्वल काफिरिन बिही, तुम इसके साथ पहले काफिर ना हो जाओ। इससे क्या मुराद है, काफिरिन भी। यहाँ एक छोटा सा नुक्ता नोट कर लीजिए कि काफिर के बाद लफ्ज बा आया है ना, जैसे कि पीछे भी हमने बात की थी ना कि ला तश्तरू भी आयाती समनन, तो बा के बाद जो चीज होती है वो क्या होती है, करेंसी। डॉलर देकर आपने कपड़े खरीदे तो डॉलर क्या है, करेंसी। तो यहाँ करेंसी क्या है, आयाती, अल्लाह की आयतों को बेचकर कीमत खरीदना। इससे क्या मुराद है। जी शाबाश, कैसे आयतों को बेचा जाता है, तब्दीली कर देना, मफहूम बदल देना, और कुछ बताना, कुछ हाफ ट्रुथ्स। देखिए अधूरे सच जो होते हैं ना, वो पूरे झूठ से भी बुरे होते हैं। आधी बात बताते थे, आधी नहीं बताते थे, फिर आगे इसकी सारी किस्में भी आ रही हैं। दुनिया खाते थे और इस तरह से दुनियावी फायदे हासिल करते थे। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इसलिए इल्म हासिल करे कि इससे दुनिया कमाए, तो वो क्यामत के रोज जन्नत की खुशबू ना पा सकेगा। तो क्या सवाल पैदा होता है कि क्या कुरान पढ़ाने या कुरान की तालीमात के बाद पैसे लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो कागे ला तश्तरू भी आयाती समनन कलीला। सवाल ये बना लीजिए, क्या कुरान की तालीम या तदरीस या कुछ भी कह लें तो उसके बाद पैसे लेना आयतों को बेचना है। जी, यानी देखिए इससे ये मुराद नहीं, लिटरली ऐसा नहीं हो सकता, वरना तो दीन का काम फिर वही तो हुआ जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में बहुत सारे वज़ायफ दिए लिए गए। जब से वो टूटा और ये प्राइवेट फोरम में आ गया, तो उसके बाद आप देखिए फिरके बन गए, हर मस्जिद अपनी मर्जी के। आज इसकी छोटी सी मिसाल आपको नोट कराती हूँ, जैसे आप देखें दुबई, अबू धाबी या यूएई की रियासतों में आप जाएं, तो लोग कहते हैं जी कि अपनी मर्जी से कोई मस्जिद नहीं बना सकता, जी आप जाके वहां दर्स नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। बाजार में बुरा लगता है ये कानून, कि ये क्या बात है, दीन से रोकते हैं, लेकिन देखा जाए तो उसके पीछे यही बात है। सारी मस्जिदें गवर्नमेंट की कस्टडी में, हर मस्जिद के इमाम की तनख्वाह, वहां के बच्चों को पढ़ाने का तरीका, ये सारा गवर्नमेंट ने ले लिया, तो किसी की अथॉरिटी नहीं है। जब लोगों को छोड़ा जाता है तो फिर भावताव होते हैं कि एक आयत कितने की और कितने का। चंद दिन पहले किसी ने मुझे मैसेज भेजा, अपने मरहूमीन की नमाजें सस्ते कीमत पे पढ़ाएं। यानी जिंदगी में पहली दफा ये जुरत किसी की देखी कि अब लोग कजा उमरी के पढ़ाने के पैसे मांग रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम आपको दूसरों से कम पैसों पे पढ़ाएंगे, और आज आप किसी की पढ़ाएंगे तो कल कोई आपकी भी पढ़ाएगा। आज तक आपने कभी ये बात पहले सुनी थी? और नीचे एड्रेस भी, अगर किसी को चाहिए तो आके मेरे से ले ले बाद में। ये है ला तश्तरू भी आयाती समनन कलीला। और क्या है, आपके लिए इस्तखारे होते हैं, टीवी पे बैठे फूके मचती हैं, दम करवा लें पैसों की बातें। किसी ने किसी की बेटी को कुरान पढ़ाने के लिए कहा कि 100 पाउंड लूंगा, कहा क्यों, क्योंकि कुरान कहते हैं ला तश्तरू भी आयाती समनन कलीला, कि थोड़ी कीमत ना लिया करो, कुरान पढ़ाने की ज्यादा लिया करो। यही है असल में कि कुरान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करना। आप कभी भी तो सोचते होंगे ना कि नबी तो अपनी वक्त के बेहतरीन इंसान होते थे, तो फिर उनके साथ ये सारा मामला क्यों हुआ जो लोगों ने उनको झुटलाया, तो उसकी वजह ये थी कि नबियों ने हर दौर में मशहूर और मारूफ और जो जुबान ज़दे आम बुराई थी उसको क्रिटिसाइज किया। जैसे आज लोग कहते हैं ये मौजू ना छेड़ें, आप आगे चलें, आप क्यों इन मौजूद पे बात करते हैं, भाई इसलिए करते हैं कि हमें समनन कलीलन नहीं लेना। सवाल पैदा होता है समनन कलीलन किस किस सूरत में आता है, पैसों की सूरत में, ओहदों की सूरत में, शोहरत की सूरत में, पॉपुलैरिटी की सूरत में, नजरानों और तोहफों की सूरत में होता है। अलील के लफ्ज से क्या बताया था आपको याद है? जितना भी लिया थोड़ा लिया। बख्सन का लफ्ज भी आ सकता था, यानी जो चीज ज्यादा हो जल्दी में थोड़े में को बेच दे। तो कुरान के लिए बख्स नहीं आया, वरना क्या मानी होता कि ज्यादा ले सकते हैं लेकिन थोड़ा नहीं लिया जा सकता। फिर इसी तरह से आप देखिए कि यहां बनी इसराइल को क्या कहा जा रहा है, या बनी इसराइल उस्कुरु नेमती अल्लती, राइट? बार बार ये तकरार है ना। आप इसी सूरत के दूसरे हाफ में, जो दूसरे पारे में शुरू होता है, आप क्या देखेंगे? फज़कुरूनी। अब ये बात जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ उनको समझ आ जाएगी, वो लिख लें। बनी इसराइल को कहा जा रहा है नेमतों को याद करो, 3 दफा इस पारे में आएगा। और मुसलमानों को क्या कहा? नेमतों को याद करो, नहीं तुम किसको याद करो? फज़कुरूनी अज़कुरकुम, वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम नेमते देने वाले को याद करो। ये उम्मत मुस्लिमा का एक खूबसूरत सा मिजाज है कि अल्लाह सुबहाना ताला ने इनको रखा। सवाल पैदा होता है कि बनी इसराइल को जब या बनी इसराइल कहा गया, तो मुसलमानों को क्यों नहीं किसी का बेटा कह दिया गया, या बनी इस्माइली कहा जाता? सवाल समझे? यानी लिखिए, ये मैंने आपको पीछे नहीं बताया, ये नई चीजें ऐड करवा रही हूँ कि बनी इसराइल कहकर यहूद को तो पुकारा गया, तो मुसलमानों को क्यों या बनी इस्माइल क्यों नहीं कहा गया? तो इसकी वजह नंबर एक ये है, इन्होंने खुद अपनी नस्बत जोड़ी थी। अब एक बड़ा बड़ा जुमला लिख लीजिए बड़े बड़े लफ्जों में कि बनी इस्राइल एक फिरका वाराना नाम है, सेक्टेरियन नेम है। जैसे आज कुछ मुसलमान खुद को हनफी, शाफई, मालिकी और कुछ और नाम देते हैं, यहूद ने अपने दौर में खुद अपने लिए ये नाम भी पसंद किया था, फिर अल्लाह ने उसको इनके लिए रख दिया, या कम से कम इनकी निस्बत इंसानों के साथ थी। मुसलमानों को क्यों बनी इस्माइल नहीं कहा गया? क्योंकि मुसलमानों की निस्बत अल इस्लाम, वल्लाहु यदुकु मिला दारुस्सलाम, हमारी तो निस्बत नबी सल्लम से भी नहीं है। हमें तो ये भी नहीं कहा गया कि ओ मोहम्मदियो, हम मोहम्मदी नहीं है। दूसरी बात है कि मुसलमान बहुत बड़ा गिरोह है, आप देखिए कि मुसलमान छोटा नहीं है। तो लिहाजा पूरी दुनिया के मुसलमानों को अल्लाह ताला ने सिर्फ एक नाम दिया जो पूरी दुनिया में मौजूद है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि यहाँ एक और चीज बताई जा रही है कि तुम इनकी कहानियों को पढ़कर अपने ऊपर देखो। आज हमारे बच्चों को हफ्ते में एक दिन भी दीन सीखना मुश्किल लगता है, और उनको हफ्ते में 5 दिन भी मजे मजे से स्कूल जाना अच्छा लगता है। उसकी वजह क्या है? कि हमने अपने बच्चों को वो खूबसूरत तारीख नहीं दिखाई जो अल्लाह ताला ने हमें दी थी। यहूद की आपको पता है कि आज भी जो कामयाबी दुनिया में है और जिस चीज पे ये दुनिया में छाए हैं ना, ये अपने बच्चों को अपनी हिस्ट्री से जोड़े रखते हैं। ये इस तरीके से अपनी अच्छी अच्छी चीजें सुनाते हैं कि इनके बच्चों में भी नस्ली तफाखुर पैदा हो चुका है। हम बड़ों की औलाद, हम उनके हैं, हम वो हैं, ये थे, वो थे, दिस एंड दैट। फिर अगली बात एक नोट कीजिएगा कि बनी इसराइल नबी सल्लम की जुबान मुबारक से कोई नई बात तो नहीं सुन रहे थे जो उनको माननी मुश्किल लगी, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आमिनू बिमान जल तो मुसद्दिक अल्ली मा, फिर क्यों नहीं माना? ये सारी बातें ये सुन चुके थे हजरत मूसा से। कुरान में आप पढ़ेंगे वैस काल मूसा लिकौम ही, ए बनी इसराइल, ए मेरी कौम, तुम वो सारी नेमतें याद करो जो अल्लाह ने तुम पर की, वाता को मालम यू ताहदुम मिनल आलमीन, कुछ इस तरह के अल्फाज हैं। मफहूम क्या है आयत का? कि बनी इसराइल तुम मेरी वो नेमतें याद करो जो कि मैंने तुम्हें दी और दूसरों को जो चीज़ नहीं दी। इमाम राजी हैं एक मुफसर, कहते हैं कि नेमतों के गुलाम बहुत सारे हैं, नेमतें देने वाले के गुलाम बहुत थोड़े हैं। आज भी देखिए हम भी तो गुलाम हैं ना नेमतों के, गाड़ियों के गुलाम, सारा दिन उनकी खिदमत करते रहते हैं, घरों के गुलाम, कपड़ों के गुलाम, सेलफोन्स के गुलाम, सबके, लेकिन नेमते देने वालों को हम कितना याद करते हैं, कितना करते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए इमाम राजी कहते हैं कि नेमते तो अबाउ अजदाद पर थी, अबाउ अजदाद पर नेमते असल में आने वालों की नेमत है, वरना तो वो सहराओं में भटक के हलाक हो चुके होते, क्योंकि इन्होंने उस चीज को लिया ही नहीं है। अच्छा खैर, उसके बाद आप देखिए ये लफ्ज़ ना मुसद्दिकन, इसको थोड़ा सा नजर में रखिए, मैं आपको इसमें छोटा सा बताऊंगी एक फर्क। लफ्ज़ देखिए मुसद्दिकन लिमा माकुम, ये मुसद्दिकन के बाद ली की जरूरत नहीं थी। आप अगर आयत नंबर 41 में ही देख रहे हैं, ली यहां बारीकी के लिए आया है, माँ काफी था, मुसद्दिकन मा माकुम ये काफी था, लेकिन इन्होंने यहां अल्लाह ताला ने लाकर इसकी हल्की से हल्की चीज को भी मना कर दिया कि तुम ये चीज नहीं कर सकते। चलिए वला तकून अव्वला काफिरिन भी, अव्वला क्यों कहा? ये बिल्कुल वही है जिसको आप उर्दू में क्या कहते हैं, अव्वल दर्जे का झूठा है ये शख्स। यानी झूठों में फर्स्ट आने वाला, क्योंकि इनसे पहले मक्का में लोग मौजूद थे। और दूसरी बात है, अहले किताब में से पहले काफिर तुम ना बनो। चलिए उसके बाद ये बात हो गई, वला तश्तरू बि आयाति समनन, और ना मेरी आयतों के साथ कीमत खरीदो थोड़ी, कलीलन व इया या फत्तकून। जी ये बताइए कि यहाँ तकवा क्यों आ गया, पीछे रहब आया अब यहाँ तकवा आ गया, याद है फर्क? तकवा बुरे इंजाम को देखकर डर जाना, यानी जब किसी के अंदर रहब नहीं रहता तो तकवा भी रुखसत हो जाता है। अल्लाह ताला ने यहाँ ये सब कुछ इसलिए बता दिया कि तुम अपने आप को देखो। आज भी यही कुछ है हमारे मुसलमानों में भी, अल्लाह सुबहाना ताला यही बात हमें बता रहे हैं कि तुम अपने आप को वैसा ना करना जैसा कि उन्होंने किया। यहाँ से अगर आप गिने ना तो मजहबी तबके की खयानतें या उनकी कमज़ोरियाँ अल्लाह ताला ने बता दी हैं ला के साथ, ला तकून अव्वल काफिर बही। किसी सोसाइटी में मजहबी तबका किसी चीज़ को रिजेक्ट कर दे तो सारी सोसाइटी उसको रिजेक्ट करने पर मजबूर हो जाती है। अगर वो प्रूव कर लें तो लोग कहते हैं लो ये दीन वाले होकर कह रहे हैं कि ये जायज़ है वो जायज़ है, तो फिर ये ठीक ही होगा। ठीक है, तो गोया कि किसी मुल्क को किसी इलाके को दुरुस्त करना है ना, तो वहाँ के मजहबी तबके तक पहुँचिए, और ये सबसे मुश्किल काम है। दीवार अपनी जगह से हिल जाएगी लेकिन दीन पहले से सीखा हुआ शख्स अपने ख्यालात से नहीं हटता। भोले भाले साफ सुथरे मासूम जहन के लोग कुरान सीख कर अपनी फिक्र करते हैं कि हाय हम किधर खोए हुए थे, हमें क्या हो गया, ये कुरान हमें कहाँ लेके जा रहा है। और जो दीनदार होते हैं ना, वो अगर किसी की सुन भी लेना तो वो परचोल करते हैं क्या हमारे पुराने ख्यालात के मुताबिक है और क्या हमारे ख्यालात के मुताबिक नहीं है, और इस तरीके से वो ये बातें कर करा लेते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का। इसमें एक तरकीब है जुमले की, जरा मैं इस पे आपकी तवज्जो दिला दूं, गौर से देखिएगा। ला तलबिसुल हक्का, तुम हक को बातिल से ना मिलाओ, तर्जमे में हमने क्या पढ़ा, और ना हक को छुपाओ, तो ला क्यों नहीं है? यानी तख्तमुल हक्का से पहले ला क्यों नहीं? वही जैसे नौर और नीदर का फर्क है, तो इसका जवाब याद है आपको, बयान है, बात चल रही है पीछे से, बयान उमा सबक कबलहू, मुराद है हक को बातिल से ना मिलाओ, हक को छुपाकर, और ये चीज बहुत बुरी है। बता सकते हैं कि बातिल को छुपाने की या हक को बातिल से मिलाने की आज के दौर की मारूफ चीजें कौन सी हैं? जी शाबाश, किस चीज को प्रमोट करना चाहते हैं? अपने स्कूल ऑफ थॉट को, अपनी सोच को सीधा रखने के लिए, करने के लिए अमूमन लोग इस तरह की बातें जो है वो करने लग जाते हैं। अल्लाह ताला ने रोका। इसमें हक का एक मानी और लिखिएगा, जब तफसीर हो रही थी तो मैंने बीच में नहीं टोका आपको। हक कहते हैं मकसद को। कुरान पाक में बार बार रियायत पढ़ेंगे मा खलकता हाजा बातिला, सूरत आले इमरान के एंड पे आता है। फिर इसी तरह सूरत स्वाद में भी आता है कि ए अल्लाह तूने इस कायनात को बातिल नहीं पैदा किया। हक लफ्ज जो है ना मकसद को कहते हैं, कायनात एक मकसद और एक पर्पस के साथ पैदा हुई है। तो यहाँ अगर वो मानी ले जाएं वह तक तुमल हक का, तो मतलब क्या है कि तुम बा मकसद चीजों को छोड़कर बेमकसद चीजों के पीछे ना लगो। फिर इसी तरह से एक और इसका मानी है कि गैर मुस्लिमों के लिए हक के दरवाजे खोलो, यानी उन तक भी अपनी दावत को लेकर चलो। इतनी बातें करके कहा वाकी मुसला, ये क्या बात हो गई? हम तो कहते हैं नमाज से बात शुरू होती है, नहीं, पहले खामियां दूर करो। मजहबी तबके की जो खामियां खराबियां थी उनका तस्करा करके अब आयत 43 में कहा अकीम मुसला। चूंकि उलमा थे, उनको नमाज का पता था, पढ़े ना पढ़े और बात है, लेकिन उनको सब पता था। इससे क्या पता चलता है कि पहले करेक्टर बिल्डिंग होती है, फिर नमाजें होती हैं, और नमाज पढ़ोगे तो साथ ही आत ज़का, ज़कात भी दोगे। आप कहते हैं कि कोहे तूर पे इनके 70 सरदार जब गए थे तो वहां अल्लाह ताला ने उनको ये बातें भी कही थी कि देखो तुम ये सारे काम जो कर रहे हो पहले तुमने इसको अपनी जात पे लेना है, और फिर वर्क आओ मार आके इन रुकू करने वालों के साथ हो जाओ। ये कौन है? ये काम है सलाक के बाद रुकू का जिक्र, इसलिए कि यहूद की नमाज में से रुकू बिल्कुल खत्म हो चुका था। आज भी किसी ने अपने एक्सपीरियंस बताया कि किसी रब्बी के साथ उनकी दोस्ती है, रब्बी कहते हैं ज्यूस के स्कॉलर्स को, जैसे क्रिश्चियंस के स्कॉलर्स को प्रीस्ट कहते हैं, तो वो कहते हैं कि वो खड़े होते हैं यूं और देखिएगा हाथ एक होता है ना, हम यूं खड़े हैं तो फिर यूं रुकू है तो फिर हम सजदे में, तो वो खड़े होने और रुकू के बिटवीन वाली जो है फॉर्म है ना, वही जैसे आप कह लीजिए कि हमें 90 का एंगल बनाना होता है, 45 भी नहीं, वो कहते हैं यूं करके ना हल्का सा 20 का एंगल करते हैं। और इन्होंने कहते हैं कि जो जिस ब्रदर से ये बात मैंने सुनी, उन्होंने कहा कि मैंने अपने उस रिब्बी दोस्त से कहा कि यार तुम ये नमाज पढ़ते हो तो तुम इसमें सजदा नहीं करते, तो कहने लगा हाँ हमने सजदा छोड़ दिया है, लेकिन हर साल एक दिन रोते हैं बैठ के एक जगह जाके अपने सिनेगॉग्स में। ये त्यौहार बन गया अब इनका कि सजदा छोड़ने का त्यौहार, तो भी रो रहे हो सजदा ही कर लो तुम बेहतर है, लेकिन कस्टम बन गया। इसी तरह उन्होंने कहा कि हर साल आज भी दरिया में से जिस दिन निजात हुई थी वो दिन ये लोग अपनी चर्च में मनाते हैं। तो आप जरा गौर से देखें ना, तो आज हम मुसलमानों में भी यही है, दीन की रूह जब चली जाती है ना तो लोग फिर वो जो अपनी महरूमियां या गुनाह या कमियां होती है ना उसको भी मनाने लग जाते हैं। वर्क उमर राकेन से यहाँ क्या मुराद है, ये जो लफ्ज है ना राकेन, अगर आप देखें ना तो राके की जमा, राके किसको कहते हैं, रुकू करने वाले को, यानी जो बंदा झुक जाता है। असल में यहां मुराद सहाबा कराम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का जो नाम और टाइटल बाइबल में था ना इनके लिए वो राकेइन था। असल में यहां इनको नबी सल्लम के सहाबा के साथ मिलने का हुक्म दिया जा रहा है। नमाज किस्तों में आपको मुझे सिखाई जा रही है, रुकू का जिक्र आ गया, अकीमों में क्याम है, शैतान वाले रुकू में हमने देखा उस जुदू में सजदे का जिक्र था, यानी थोड़े थोड़े टुकड़ों में अब हमें नमाज सिखाई जा रही है। यहाँ असल में एक जुमला सिखाया गया है कि इबलीस ने तो सजदे का इनकार किया था जो निस्बतन मुश्किल है, तुम तो इससे भी बदतर हो के रुकू भी नहीं कर रहे। और यहाँ एक और बात है, झुकाओ, रुकू का लफ्जी मानी होता है झुकना, इल्म वालों को नसीहत की जा रही है कि तुम झुको। देखिए इल्म होना और चीज़ है और झुकाव होना और चीज़ है। बहुत सारे लोगों के पास इल्म होता है मगर तकवा नहीं होता, उनके अंदर झुकाव नहीं होता। इल्म लोगों को दिखता है, तकवा अल्लाह को दिखता है। अगर किसी में एटीट्यूड है ना बड़ा बनता है, हाँ मैं नेक, मैं बहुत, मेरे लिए प्रोटोकॉल हो, मेरे लिए कुर्सी ऊंची रखी जाए, मुझे ज़रा अलग से सर्व किया जाए, और फिर प्रोटोकॉल डिजर्व करना ना, ये सारा कुछ होता है, ये वर्क उमर राकेन के अंदर समझिए, अपने आप को आम लोगों जैसा समझो। टोन बदल जाती है बाज़ दफ़ा, ये गुनाहगार लोग, हम बड़े नेक, हम वो, यानी यहाँ असल में आजजी भी सिखाई जा रही है। और आप, मैं तो किसी जगह अपने आप को सेट ही ना करें तो बहुत बेहतर है। जिंदगी में कभी आपको कोई अल्लाह दौलत दे दे इल्म की और हम कुछ भी आपको इज्जत शोहरत मिले, कभी लोगों से बड़ाई ना मांगे, क्या आपके हुक्के उठा उठा के लोग फिरते जाएं और आप लोगों से कहें, दूसरों का दिल करे आपकी खिदमत करने को, लेकिन आप घर से ना ये सोच के जाएं कि ये मेरी बड़ी खिदमत करेंगे और ये मुझे बहुत प्रोटोकॉल देंगे। फिर इसके बाद आप देखिए आगे अल्लाह ने अता मरूनन नासबिल बिरी व तनसौन अनफुसकुम, क्या तुम लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो और खुद भूल जाते हो। ये जो बिर का लफ्ज है ना, ये बर से है, बर जंगल को कहते हैं, छोटी बड़ी लकड़ियां होती हैं जंगल में, मुराद क्या है, नेकियों का गठल बनो। क्या मतलब, छोटी एक खास टिपिकल नेकी ना करो, छोटी नेकियां बड़ी नेकियां, और सबसे बड़ी बात है स्टेबल हो जाओ। आप देखिए कि यहां से अब वही बात आ गई जो मैंने जिक्र कर दिया था कि दूसरों के लिए मुश्किल दीन और अपने लिए रुख्सत वाला दीन ना रखो। ये है अतामरुन्नास बिलबिर्रि व तंसौन अनफुसकुम। बस लोगों ने दूसरों के लिए हमेशा नवाफिल को और मुजाहिदों को और चिल्लों को इतना मारूफ किया होता कि आम लोग कहते हैं हम नहीं पढ़ सकते, हमसे नहीं हो सकता ये काम, फलां आलिम की किस्सा सुनाएंगे और 40 साल तक उनकी एक दफा तहज्जुद नहीं छुटी, मान लिए, पर ये बताएं जो आप सुना रहे हैं आपकी कितनी दफा छुटी है। बात समझ है कि लुक इन द मिरर, अपने आप को पहले शीशे में देखो, आप अपने आप को देखो। आज ये भी हमारे दीन के अंदर लोगों के रुझान के कम होने का पता है जरिया जो बात बनी, दीन सिखाने वालों ने, तबलीग करने वालों ने एक तो खूब बड़े बड़े किस्से सुनाए, जिसको सुन के सुभान अल्लाह अल्हम वाह 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 की बातें, और अंदर से वो लोग जिसको कहना चाहिए ना उनका मोरल डाउन होता है, हाय 40 साल तक तहज्जुद नहीं छोड़ी, मैं तो भी फजर भी नहीं पढ़ता, मैं नहीं कर सकता, पीछे हो जाओ, मैं नहीं, तुम नहीं कर सकते। यही हुआ, फर्ज और सुन्नतों का फर्क नहीं रखा आज हमारी उम्मत ने, 17 रकत ही पढ़नी है ईशा की, नहीं तो नहीं पढ़नी। यहां बताया कि दीन की तरतीब ना बदलो, फर्ज और सुन्नतों का फर्क कायम रखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कारनामा हम सूरत अल आराफ में पढ़ेंगे, व यदा अनहुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। आपने लोगों के लिए दीन को आसान किया था, तो दीन को आसान ये नहीं करना कि आप कह दें कल से नमाज़ें माफ़ हैं, ये मेरे आपके हक में नहीं है, लेकिन यहाँ असल में एक जुमला लिख लें, पॉजिटिव तबलीग करो। तुम्हारी बात सुनकर किसी को उठने को दिल करे, ये नहीं कि जो हिम्मत टूटी थी और ही टूट जाए कि ये तो इतना बड़ा गोल है। देखिए ना, किसी से आप कहते हैं 100 सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो नीचे खड़ा होकर कहेगा मैं नहीं चढ़ सकता, तो आप कहते नहीं 10 चढ़ लो बस, इधर एक स्टॉप ले लेना, बस इधर ही जाना है, 10 ले लेगा ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता अगली दफ़ा उसको 10 और चढ़ा दें तो वो 100 भी चढ़ जाएगा। बस दफ़ा तबलीग के दौरान लोग कैसी बातें करते हैं, और कभी आप ज़रा व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस लोग उल्टे सीधे अपनी मर्जी से भेजते हैं, 3 दफ़ा दुनिया में शायद 4 दफ़ा सूरज रुक गया, पता नहीं क्या। अब एक मैसेज था कुछ दिन पहले, ना रेफरेंस, ना हवाला, ना कोई लेना ना देना, और बात क्या थी कि वो एक दफ़ा क्या हुआ कि हज़रत फातिमा का दुपट्टा उतर गया था तो सूरज अपनी जगह रुक गया। आउज़ु बिल्लाह मिनश शैतान। एक दो हज़रत अली की आंख ना खुली तो सूरज रुक गया कि उठेंगे फजर पड़ेंगे तो सूरज निकलेगा। ये बातें ना किया करो दीन में, इतनी तो प्रैक्टिकल बातें वो ही नहीं बताई जाती, तो ये इधर उधर की बातें कहाँ सुनाई जाती हैं। और वल्ला ही मैंने देखा है जो लोग रस्मी तौर पर मौक़ों पर जमा होते हैं ना, वो यही सुनते और यही सुनाते हैं। आजकल तो मुझे भी इत्तेफाक हो रहा है कहीं ना कहीं इधर उधर जाके सुनने का, कि मैं भी तो देखूं लोग कौन सी लोरियां सुन के घरों में बैठे रहते हैं, और वाकई वो सुन के दिल नहीं करता फिर आओ इधर बैठो 2-2.5-3 घंटे की तफसीर सुनो और क्लास लो और तजवीद लो, नहीं हम नहीं कर सकते। देखिए, नए लोगों के अंदर तबलीग का तरीका पुराने लोगों का फ़र्क होता है। बस लोग तबलीग के दौरान लोगों को फ़र्क ही नहीं बताते, ये फ़र्ज़ है, ये सुन्नत है, ये रुकन है, ये क्या है। नए लोगों को सिर्फ फ़र्ज़ बताएं, आप क्यों उनके सामने लंबी नमाज पढ़े, वो घर जाके बेहोश ही हो जाए, हमारे बड़े तो इतनी लंबी नमाज पढ़ते हैं सजदे से नहीं उठते, सो जो जाते हैं अंदर तो उठेंगे कैसे। दूसरों के सामने छोटी नमाज पढ़ो, तस्बीह। अच्छा, लोगों को मैंने खुद देखा है, वॉक कर रहे होता है ना तो तस्बीह और बातें शायद आम चल रही है और तस्बीह का दाना चल रहा होता है। भैया, आपकी उंगलियों पर इतनी प्यारी तस्बीहें अल्लाह ने दे दी, आप उसको ले लीजिए। फिर इसी तरह हराम चीज़ों का दायरा कर जरा सा थोड़ा बताओ, एक हराम है और एक मकरूह है। आप पहले लोगों को सिर्फ हराम चीज़ें बताएं, जब वहाँ आदि हो जाएंगे फिर उसके बाद हल्की चीज़ें। ठीक है, हर चीज़ का होता है असर, लेकिन कहने का मतलब यह है कि व्हाट लीड्स टू हराम। किसी का लेक्चर था तो 45 मिनट उन्होंने सिर्फ यूट्यूब हराम है इस मौजू पे लेक्चर दिया। क्यों? क्योंकि इट लीड्स टू हराम। तो हराम 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 हराम, हर चीज़ हराम, तुम भी हराम, ये भी हराम, वो भी हराम, ये है तुम अपने आप को। और अपने घरों में जाकर देखो, अपनी ज़िंदगी में देखो, जो लंबी चौड़ी बातें की होती हैं कि अपने अमल में आ सकती हैं जो दूसरों को सुनाते हो। तो लिहाजा लोगों को दीन के मामले में बशिरु वला तुनफ़िरु। अब इसका ये भी नहीं मतलब कि बशारतें दे दो दीन बदलने की नहीं, लेकिन फ़र्क रखो, इसलिए कि आम लोगों पर बोझ ज़्यादा डालते हैं तो फिर वो दीन से भाग जाते हैं। और अगर ज़रा कोई सीधी सी बात करें तो कहते हैं ये दीन आसान करें, ये दीन को बदल रहे हैं। और आप देखिए, वन तुम ततलून अल किताब, यहाँ से भी एक बड़ी प्यारी बात पता चलती है, कुरान पढ़े हुए का मिजाज दूसरे से फ़र्क होना ही चाहिए। अपने आप को ठीक करो। अफला ताकिलून, क्या तुम अकल नहीं रखते। यहाँ देखिए अफला ताकिलून, ये बड़ी अहम बात है। बनी इसराइल के उलमा को इल्म था मगर गौर व फिक्र और अमल नहीं था। अल्लाह ताला ने यह नहीं कहा कि अफला तालमून, आप इस जुमले पे नजर जमाएंगे ना फिर बात समझ आएगी। अगर ये कहा जाता ना अफला तालमून तो मतलब क्या था, तुम्हें इल्म ही नहीं है, ये तो नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, अफला ताकिलून, तुम्हें अकल नहीं है। क्या पता चला कि प्रॉब्लम इज नॉट विद देयर हार्ट्स, यानी प्रॉब्लम इज विद देयर हार्ट्स नॉट देयर माइंड्स। देखिए, दीन सीखने के 2 दर्जे होते हैं, एक इल्म का दर्जा होता है, एक उस पर गौर व फिक्र का दर्जा होता है। ताकिलून,